चलते हैं अपनी जन्नत की मजलिसें एपिसोड 9 की तरफ। और ये आज हमारा लास्ट प्रोग्राम है। सब साथी एक दूसरे से मिल मिल के खुश हो रहे थे। हर थोड़ी देर में फिजा में कह कहे बिखर जाते थे। ये जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सब में एक चीज मुश्तरक थी कि सबके दिल चिड़ियों जैसे नरम थे, आजिज मिजाज, अल्लाह ताला से डरने वाले बेजर लोग थे। सब अपनी अपनी कहानियां दूसरे से शेयर कर रहे थे। दुनिया में कई लोगों के बारे में पूछ रहे थे, फलां कैसा, फलां कहाँ है। मैंने भी आसफा आंटी नहीं आसफा से पूछा, आपकी उसकी बहन का क्या बना जो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के ले आती थी दीन में, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। वो बोली हाँ, वो जो बिदात से बाज नहीं आती थी। मैंने कहा हाँ वो ही। मुझे याद है एक बार तो मैंने उनको मना किया तो मुझसे लड़ने खड़ी हो गई कि हम तो बाप दादा के वक्त से ये करते चले आ रहे हैं, अब तुम न्याय दीन लेके खड़ी हो गई हो। मैंने लाख समझाया भी कि ये दीन में इजाफा है, ऐसी कोई चीज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, तो आप क्यों कर रही हैं। मगर वो सुनने को तैयार नहीं होती थी। वो एक ही रट लगाए रखती थी कि लो हमारे बुजुर्ग क्या गलत करते थे। आसफा ने सर्द आह भरते हुए कहा हाँ वो ऐसी थी, मैंने उसको कम नहीं समझाया मगर वो मानती नहीं थी। यहाँ हशर के मैदान में जब हम सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो वो महरूम रह गई। उस वक्त इतनी प्यास थी और वहां तो गर्मी भी किस कदर शदीद थी। मैंने उसको देखा वो हुजूम को चीरती भी आगे बढ़ी कि मुझे पहले दे दें, मुझे पहले दे दें, मगर फरिश्तों की सिक्योरिटी फोर्स ने उसको पीछे धकेल दिया कि आप आगे नहीं जा सकती। उसने बड़ी हैरत से पूछा क्यों। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाने लगे आने दो, ये मेरी उम्मत ही है। तब सिक्योरिटी पर मामूर फरिश्तों ने कहा आपको नहीं पता इसने आपके बाद आपके दीन में क्या क्या नई बातें ईजाद कर दी थी, ये बिदात में पड़ी हुई थी। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। ये वहां पे चीखती रह गई कि मैं तो उम्मती हूं, मैं तो उम्मती हूं, मुझे तो बड़ी शदीद प्यास लगी हुई है, मैं तो बड़े नेकी के काम किए हैं। मगर फरिश्तों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको पीछे कर दिया। इसके बाद खुदा जाने उसका क्या हिसाब किताब हुआ, मगर वहां तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो मुसलसल कहती जा रही थी कि मैं अच्छे काम करती थी, मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं। मगर अफसोस कि वो ये नहीं समझ सकी कि अच्छाई या नेकी वो ही होती है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहर लगी हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हो, जिसको अप्रूव किया हो। खुद से किसी काम को हम नेकी का काम डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर आसफा कहने लगी असल में जब दीन का इल्म ना हो तो इंसान इसी तरह ठोकरें खाता फिरता है, फिर जो कोई बता देता है इंसान वैसे ही करने को तैयार हो जाता है। और ये अकेली तो नहीं थी, वहां पे तो बेशुमार लोग थे उसकी तरह के जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया था और फरमा दिया इनको दूर कर दो मुझसे। तब तो ये सब लोग इतने दुखी हुए, इतना अफसोस करने लगे। मैंने कहा समझ नहीं आती इतनी सारी सुन्नतों को छोड़ के लोगों को बिदात में क्या मजा आता है। वो बोली बस शैतान ने किसी तरह तो बर्बाद करना ही था ना उनको। अरे गुड़िया तुम यहां बैठी हो, अस्सलाम वालेकुम, नीली की प्यारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। देखा तो इंतहाई हसीन लड़की है, खूबसूरत सा बच्चा गोद में लिए खड़ी है। मैंने सलाम का जवाब दिया और कुछ हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से पूछा नीली ये बच्चा कौन है। दुनिया में तो नीली की कोई औलाद नहीं थी, मैं उसको कॉलेज से जानती थी, मेरे सामने शादी हुई, मुख्तलिफ जगहों से उसने इलाज भी कराया मगर औलाद से महरूम रही। मुझे याद है जब भी मिलती थी कहती थी बस दुआ करो अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे, मगर रब को नहीं था मंजूर। इसकी गोद में इतना प्यारा बच्चा देख के मुझे बड़ी हैरत हुई। वो हंसते हुए कहने लगी, ये मेरा ही बच्चा है, तुम्हें तो पता है मुझे बच्चों का कितना शौक था। यहां आई तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे तो औलाद की ख्वाहिश है जो दुनिया में कभी पूरी नहीं हुई, मुझे तो बच्चा चाहिए। मैंने हैरत से कहा, फिर? वो बोली, बस फिर क्या। उसी वक्त मुझे हमल ठहर गया, थोड़ी देर में बगैर किसी तकलीफ के बच्चा पैदा हो गया। और मुझे ये इतना प्यारा लगता है कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ूं। वो उसको उठाए उठाए फिर रही थी। वाकई वो बच्चा था ही ऐसा कि उसको देख के किसको ना प्यारा है। और नीली तो कब से तड़प रही थी औलाद के लिए। मैंने कहा, तुम तो अच्छी रह गई। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, देखो तुम्हारे सबर का तुम्हें कितना अच्छा बदला यहाँ पे मिल गया, औलाद भी मिल गई, और वो ऐसी जगह पे मिली कि ना तो तुम्हें कोई मुस्तकबिल का खदशा, ना कोई खौफ, ना इसके बिगड़ जाने का कोई डर, ना इसकी नाफरमानी से अजियत, ना इसके पालने की मुशक्कत। वो हंस दी, यूं लगता था उसको तो वाकई जन्नत मिल गई। मैंने कहा, और बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? इसकी अम्मी के तो क्या ही कहने थे, मैंने इन जैसी औरत नहीं देखी थी। इस कदर लोगों की मदद करती थी, यानी अपना नींद आराम छोड़ के दूसरों के कामों के लिए भागती फिरती थी। उनको अगर पता चल जाता कि फलां का कोई काम फंसा हुआ है या उसकी कोई जरूरत है, बस मालूम होने की देर होती थी। वो तो ऐसे करती थी जैसे दूसरे का काम नहीं इनका अपना है। मैंने ऐसी औरत नहीं कभी देखी, इतनी भाग दौड़ करती थी और बेलॉस होके, और तब तक चैन से नहीं बैठती थी जब तक दूसरे का काम ना करवा देती। मेरे अपने सामने हजारों मिसालें थी। मेरी सफाई वाले के शौहर की नौकरी का मसला था, ये खुद उसको लेकर भागती फिरी। हमारे हमसाए में एक आंटी बेवा हो गई थी, उनके शौहर की पेंशन के मसाइल थे, उनको हल कराने के लिए कागजात लेकर दफ्तरों में ख्वार होती फिरी। एक दफा हमारे ड्राइवर का बच्चा बीमार हो गया, खुद गाड़ी लेकर आ गई कि इसको गाड़ी में डालो, मैं लेकर जाऊंगी अस्पताल। मेरे जमाने के लोगों में तो ऐसी बहुत ही कम कोई मिसालें देखने को मिलती थी कि जो बस दूसरों के लिए बने हों। ऐसे लोग कहां थे? उन्होंने नहीं देखना होता था कि गरीब है या अमीर है, सबकी हेल्प के लिए एक टांग पे खड़ी जाती थी। नीली कहने लगी, अम्मी की तो ना पूछो क्या उनको प्रोटोकॉल मिला, मीजान में उनकी नेकियां इतनी भारी तुली, और वो सब लोग जिनकी वो मदद करती थी वो उनसे कह रहे थे, आप फिक्र ना करें, आपकी नेकियां कम हो गई तो हम आपके लिए शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, हम अल्लाह ताला को बताएंगे कि आपने अल्लाह के बंदों की कितनी खिदमत की है, मगर इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो हिसाब किताब भी पर्दे में हुआ, किसी को पता नहीं उनसे क्या पूछा गया। हाँ इतना जरूर हुआ कि जब वो हिसाब किताब से निकली तो खुशी से चिल्लाती भी कह रही थी, हाँ उमुक रहो किताबिया, लो लो लोगो देखो मेरी किताब, लोगो देखो मेरी किताब, ये देखो मेरा अमाल नामा। अम्मी जैसे लोगों की निशानियां तो दुनिया में ही जाहिर हो जाती हैं। जिसको देखो उनको दुआएं देता था, जिसको देखो उनकी तारीफ करता था। हमारे इर्द गिर्द जितने हमसाए रिश्तेदार सब के साथ किसी ना किसी वक्त में उन्होंने कोई ना कोई भलाई की थी। किसी को पकड़ के उसकी बच्ची को सिलाई सिखा रही हैं, किसी के बच्चे को नसीहत कर रही हैं, किसी के घर में ग्रोसरी ड्रॉप कर रही हैं, किसी को राइड दे रही हैं। बल्कि कई दफा तो रिश्तेदार कहते थे, तुम्हारी अम्मी ने क्या दुनिया भर का ठेका ले रखा है, क्यों पागल हुए फिरती हैं, क्यों इतनी भागती दौड़ती रहती हैं लोगों के पीछे, लोग तो इनसे फायदा उठाते हैं, मगर अम्मी किसी की परवाह नहीं करती थी। मैं देख रही थी जब लोग पुल से रात पर इस कदर परेशान थे और उनके कदम फिसल रहे थे, तो मेरी अम्मी आराम से उस पे से गुजर रही थी। मैंने सोचा, कौन नहीं जानता था कि ये सब नेकी के काम है, हम सबको पता था, मगर इसके बावजूद हम में से तो बहुत कम ही कोई इन नेकियों को समेटने के लिए आगे बढ़ा। नीली की अम्मी उन चंद में से एक थी। हम अच्छी तरह जानते थे दुनिया में कि ये जन्नत में ले जाने वाले काम है, फिर भी हम परवाह नहीं करते थे। हाँ, हम सबकी ख्वाहिश जरूर थी कि हमें जन्नत मिल जाए। अरे गुड़िया, ये तो बताओ, रजा भाई तुम्हारे जो दूसरे शौहर थे काफी सख्त मिजाज थे, जो उन्होंने तुम्हें सता के रखा हुआ था, तो इसका तुम्हें क्या बदला मिला? मैंने कहा, वो सबर जो मैंने अपने शौहर की बातों और अजियतों पे किया था, वही तो मेरे काम आ गया। ऐसे ही तो नहीं मुझे जन्नत मिल गई, ये सबर वालों के लिए ही तो है। वो कहने लगी, सही कहती हो, मेरे जैसी के लिए औलाद से महरूमी पर सबर, किसी के लिए अपने प्यारे की जुदाई पर सबर, किसी के लिए बीमारी पर सबर, किसी के लिए सख्त हालात पर सबर, किसी के लिए औलाद की तरफ से सबर, किसी के लिए उसके शौहर की तरफ से सबर, हर किसी की जिंदगी में किसी ना किसी तरह सबर के इम्तिहान आए थे, वन वे और अनदर। इसके बाद किसी ने तो सबर करके अजर पा लिया और कोई बेसब्री करके अजर को गवां बैठा। दुनिया में उस वक्त समझ नहीं आया करती थी कि ये सबर के हालात अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए ताकि हमारे जन्नत के रास्ते को हमवार कर दे, आसान कर दे, ताकि वो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। समझ ही नहीं आती थी, इसीलिए तो बेसब्री करके हम अपना रास्ता ही खो देते थे और कभी अल्लाह ताला से नाराज होते थे, कभी गिले शिकवे करते थे, कभी ये कहते थे हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, कभी वावेला करते थे, कभी मायूस हो जाते थे। वहां 4 दिन के सबर किसे जन्नत जैसा घर मिल सकता था, मगर कितने ही थे जो बेसब्री करके सारा अजर गंवा देते थे। अल्लाह ताला तो उनके साथ भलाई करना चाहता था, मगर उन्होंने भलाई के मौके को गंवा दिया। मैंने कहा, हाँ नीली ठीक कहती हो, मगर ये भी तो देखो ना कि इल्म हो तभी तो इंसान को ये बातें समझ आती हैं। जब इल्म ही ना हो, पता ही नहीं सबर क्या है, सबर पे मुझे मिलेगा क्या, तो इंसान कहां सबर करता है। हम दोनों ने एक बार फिर इल्म की दौलत मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने हमें ये समझ दी थी, शऊर दिया था, और इस इल्म की बदौलत ही हम सबर कर पाए थे। हमने बहुत शुक्र किया, उसने हमारे आमाल की ऐसी कदरदानी की कि हमें जन्नत जैसी सदा बहार जगह पर ला बसाया, हमसे हर दुख और गम को दूर कर दिया, हमें किसी मरहले पर तन्हा नहीं छोड़ा। हशर के मैदान में भी जब सर गर्मी में सब लोग इतना तड़प रहे थे और दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त उसने हमारे लिए अर्श का साया कर दिया था। मैंने कहा, नीली मैंने तुम्हें अर्श तले खड़े देखा था, और तुम्हारे साथ रजा भाई भी थे, तुम्हारे शौहर, तो तुम्हें ये साया क्यों मिला? वो बोली, तुम मेरे शौहर को तो जानती हो, उनको तो इसलिए मिला था कि वो मस्जिद के दीवाने थे, उनकी दौड़ तो बस मस्जिद तक होती थी, उनका तो दिल जैसे मस्जिद में अटका ही रहता था, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको वहां अपने अर्श का साया दिया और मुझे छुपा के सदका करने पर मिला था। मेरा किसी को पता नहीं हुआ करता था, मैं कहां दे रही हूं, किसको दे रही हूं? मैंने उसकी गाल को पकड़ के प्यार से खींचते हुए कहा, हाँ तुम तो बेटी भी किसकी हो, तुम्हारी अम्मा भी ऐसी और तुम भी। वो हंस के बोली, और ये बताओ तुम्हें किस बात पे मिला था? मैंने कहा, मैं दुनिया में जब भी अकेली होती थी ना तो बहुत सोचा करती थी, कभी अल्लाह ताला से मोहब्बत के बारे में, कभी अपने गुनाहों को याद करती थी और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। अक्सर ऐसा तहज्जुद के वक्त होता था जब मैं तहज्जुद पढ़ती और उसके बाद खुद को तसव्वुर करती कि एक दिन इसी तरह अंधेरा होगा और मैं कब्र में पड़ी होंगी, और कयामत के दिन के अंधेरों का सोचती थी तो मेरी आंखें बह जाती थी। ये तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत थी कि उसने मेरे हकीर से आंसुओं की इतनी कदरदानी की कि जिस वक्त मैं शदीद गर्मी में जल रही थी हशर के मैदान में, तो अपने अर्श का ठंडा साया दे दिया कि गर्मी का एहसास ही खत्म हो गया। आसफा कब से हमारी बातें खामोशी से सुने जा रही थी, अब लगता उनसे रहा नहीं गया। बोली, मुझसे नहीं पूछोगी मुझे मेरे रब ने साया क्यों दिया अपने अजीम अर्श का? हमने कहा, क्यों नहीं, आप भी बताइए। कहने लगी, अपने दीन के साथियों से, मुसलमानों से मोहब्बत करने की वजह से। ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर थी क्योंकि ये अल्लाह का नाम लेने वाले, इसके सिवा कोई और वजह नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई और ताल्लुक नहीं था। बस मेरे लिए इतना ही काफी हुआ करता था कि ये मेरे रब के मानने वाले हैं, ये मेरे दीन के साथी हैं, उनसे जो बेलौस मोहब्बत थी, तुम सब से जो मोहब्बत है, उसकी वजह से मुझे अर्श का साया मिला। वो अभी बातें कर ही नहीं थी कि हमारे मेरे खादिम तरह तरह के खाने खूबसूरत तश्त में सजाए हुए हमारे सामने हाजिर हो गए। सब ने अपनी अपनी पसंद की चीजें उसे चुन ली। यहाँ के खाने कभी खत्म ना होने वाले थे, इनकी लज्जत से कोई सहर नहीं हो सकता था, कभी जी भरता ही नहीं था। ऐसा मजा कि कौन इसका इनकार कर सकता था। इतने सारे साथी जमा थे फिर भी खाने में कमी का खौफ नहीं था, ये फिक्र नहीं थी कि खाना ठंडा हो जाएगा, ना ये मसला था कि इतनी कसरत से खाना होने की वजह से कहीं क्वालिटी खराब ना हो जाए, लज्जत में कमी ना आ जाए, और ना ही ये फिक्र थी पता नहीं सबको पसंद आएगा भी नहीं या नहीं। मैं इन्हीं खदशात में रहती थी जब भी दुनिया में कोई दावत करती थी, मगर यहां तो ऐसा कोई भी खदशा नहीं, मैं बेफिक्र होके बैठी हुई थी, ना मेहमानों के जाने के बाद कुछ संभालने की टेंशन थी, खुद भी ऐसे ही एंजॉय कर रही थी जैसे दूसरे मेहमान कर रहे थे, वरना दुनिया में तो सारा वक्त मेहमानों को ही पूछती रहती थी, और जब सब चले जाते थे तब मेरे खाने की बारी आती थी, मगर यहां मैं सबके साथ खा पी रही थी, और मेरे खादिम इतने सलीके से सब कुछ मैनेज कर रहे थे कि मुझे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। दुनिया में तो नौकरों के साथ मैं अपना सर खपा देती थी फिर भी काम मेरी मर्जी का नहीं हो पाता था, और ये तो इतनी एफिशिएंटली काम कर रहे थे जैसे इनकी जिंदगी का मकसद ही ये हो, और प्रोफेशनल ऐसे थे जैसे किसी ने इनको अरसा दराज से ट्रेन किया हो, यूनिफॉर्म ऐसे पहने हुए थे कि बंदा देखता रह जाए कि क्या ये खादिम है। चेहरों पर काम की वजह से ना कोई नागवारी ना कोई थकन, खुशी खुशी अपना काम करते फिर रहे थे, इसीलिए इनसे काम लेते वक्त भी दिल तंग नहीं हो रहा था, वरना दुनिया में तो कोई नागवारी से चिढ़ के कोई मेरा काम करता तो मैं उसे काम ही लेना नहीं चाहती थी। मेरा मूड ही खराब हो जाता था। जिस जन्नत के खादिम भी इतने खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाले हों, तो वाकई उस जन्नत की बाकी नेमतों का तो अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। जितनी देर भी सबने बातें की, हर बात में खैर ही थी, किसी बात में शो ऑफ नहीं थी, किसी ने कुछ खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की, किसी ने शेखियां नहीं मारी, किसी ने तंज के तीर नहीं बरसाए, कोई किसी से जलस नहीं हुआ। बाज साथी ऊपर के दर्जों से नीचे उतर के आए थे मेरी दावत अटेंड करने, मगर किसी को ये तकलीफ नहीं हुई कि इनको क्यों ऊपर के दर्जे मिल गए। और उन्होंने भी किसी को टॉन्ट नहीं किया कि तुम तो दुनिया में बड़ा बनी फिरती थी, अब तुम नीचे के दर्जे में हो। ऐसी कोई बात जो दूसरे को नागवार गुजरे किसी के मुंह से नहीं निकली। ना ही किसी ने किसी की बुराई की कि देखो वो कैसी लग रही है, ना किसी ने किसी का मजाक उड़ाया। कोई लफ बात तो यहां पे थी ही नहीं। जो जिस चीज का मालिक था वो उसी पर राजी था, जिसको जो मिल गया वो उसी में खुश था। कोई दूसरे की चीज को ललचाई भी नजरों से नहीं देख रहा था। किसी ने दूसरे को हर्ट नहीं किया। सब एक दूसरे से खुश होकर मिले। मैं सोच रही थी जन्नत की मजलिसें भी कितनी हसीन है, जैसे यहां के रहने वालों के दिल साफ और हसीन है, इसी तरह ये मजलिसें भी हैं। वरना दुनिया में तो इतने बड़े स्केल पे अगर कोई पार्टी होती तो कई दिन तक गॉसिप्स का सिलसिला ही चलता रहता। वाकई जन्नत में किसी बदजुबान बदखलाक की गुंजाइश ही नहीं है। इस कदर पाकीजा माहौल वाली जगह है कि यहां पर वही लोग रह सकते हैं जो पाकीजा अखलाक वाले हैं, पाकीजा और हसीन किरदार वाले हैं। ये रिक्वायरमेंट यहां के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस जगह की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए वाकई सही रिक्वायरमेंट रखी है, इस जगह के मुताबिक है। यहां कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो इस माहौल को पेलूट कर दे, जो यहां पे मिसफिट हो। हां हमारे दरमियान नोक झोंक भी थी, हंसी मजाक भी था, कहके भी थी, गपशप भी हुई, मगर सब पाकीजा। कोई भारी दिल के साथ यहां से नहीं जा रहा। मैं एक एक मेहमान के पास जाके उनसे घंटों बातें करती रही, अपने उस्ताद के पास बैठ के उनकी मीठी बातें सुनती रही। ना मुझे कोई जलती थी ना उनको। पता नहीं इसमें कितना अरसा गुजर गया। हर साथी की एक कहानी थी, हर एक के पास बताने को कुछ ना कुछ जरूर था। किसी को भी दूसरे से कोई शर का अंदेशा नहीं था, इसीलिए हर कोई खुल के बातें कर रहा था। किसी को ये परेशानी नहीं थी कि मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ना ये था मसला कि मेरी बातें बाहर निकल जाएंगी, मेरे राज खुल जाएंगे। मेहमानों के रुखसत होने से पहले हमारी उस्ताजा ने एक ऐलान किया, प्यारी बहनों आप में से कौन कौन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा, फातिमा, मरियम, बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी उम्माहात और सहाबियात से मिलना चाहता है। सब इस कदर एक्साइटेड हो गए, सबने एक जुबान से कहा मैं। ये तो हमारी आइडियल हुआ करती थी दुनिया में, इनसे कौन नहीं मिलना चाहेगा। वो कहने लगी अच्छा फिर हम कल उनकी जियारत के लिए चलेंगे, और इसके बाद हमें और भी तो वीआईपी से मिलना है। मेरे जहन में आया और कौन हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा। वो बोली हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, सहाबा से, और किससे? मैं सोच रही थी, और किससे मिलना? क्या कह रही है ये? वो कहने लगी, दूसरे भी तो बहुत सारे अंबिया हैं जिनके किस्से हमने कुरान में पढ़े थे, और बहुत सारे हैं जिनके किस्से कुरान में नहीं थे, उनसे भी तो मुलाकात करेंगे। हम सब बहुत खुश हो गए, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। हम उनसे मिलेंगे, इतने बड़े लोगों से, हम उनसे बात भी कर सकेंगे, और सहाबा से। मैं तो फौरन सोचने लगी, मैं उनसे क्या क्या पूछूंगी। आपका एक एक लम्हा कैसा गुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में। अम्मी आयशा से बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे, कितना मजा आएगा ना, वाकई ये जन्नत है। यहाँ तो वो सब कुछ मिल रहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते थे दुनिया में। मैंने करीब में खड़े फरी से कहा, मैं सोचती हूँ बीबी आसिया कैसी लगती होंगी ना, आखिर मलिका थी उस वक्त के बादशाह की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली कैसी होगी, उनकी बेटियां कैसी होंगी, उनके बच्चे कैसे होंगे। सोच सोच के मेरा दिल खुश हो रहा था। इसके बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे, और मैं मुसलसल मुस्कुरा रही थी। शायद कोई उस वक्त मुझे देख लेता तो सोचता, ये क्यों मुस्कुराए जा रही है, कोई बात भी नहीं। और मुझे ये खुशी थी कि हमने कल कितने प्यारे लोगों से मिलना है। मैं टहलते टहलते अपने बाग की तरफ आ गई कि एक ऐलान करने वाले की आवाज कान में पड़ी, ऐ जन्नतियों, ऐ जन्नतियों। बहुत सारी आवाजें आई, लब्बैक, ये मेरे रब्बे करीम की आवाज थी, उसने हम जन्नतियों को पुकारा था। मेरे मुंह से भी बेख्तियार निकला, लब्बैक मेरे रब, लब्बैक, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं तेरी इताअत में हाजिर, सारी भलाई तेरे ही हाथ में। मेरे रहमान रब ने फिर हमसे एक सवाल किया, तुम सब राजी हो? इस सवाल करने पर मेरे आंसू टप टप गिरने लगे, हर तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी, ऐ हमारे रब, हम राजी, हम राजी। और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था, मैंने आयशा से कहा है, मेरे रब, मैं कैसे ना राजी हूं, तूने तो मुझे सब कुछ अता कर दिया, वो सब कुछ जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दिया, मैं राजी, मैं कैसे राजी ना हूं, मुझे और क्या चाहिए। फिर मेरे करीम रब ने फरमाया, अब मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना अता करूं। कई आवाजें आईं, इससे बेहतर भला क्या चीज हो सकती है। मैं भी सोच में पड़ गई, अब और क्या रह गया, सब कुछ तो मिल गया, मेरी तो वो औकात भी नहीं जितना कुछ मेरे रब ने मुझे दे दिया। फिर आवाज आई, मैं तुम्हें अब अपनी रजा से नवाज रहा हूं, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज ना होऊंगा। ये बात सुननी थी कि मेरे आंसू ऐसे बहने लगे कि थमने का नाम ले लेते थे। ये तो वो आरजू थी जिसकी तड़प लिए जिंदगी में कितनी रातें और कितने दिन रोई थी, कितनी दफा हाथ दुआ के लिए उठे थे और यही मांगा करती थी। ऐसे लगा सारी जिंदगी मैंने इसी एक बात को सुनने के लिए तो गुजार दी कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए, हर काम इसीलिए किया, मेरा रब राजी हो जाए। जिंदगी में इतना डर लगता था कि पता नहीं रब राजी भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे नाराज हो गया, कहीं मैं किसी काम से, अपनी किसी गलती से उसको नाराज ना कर बैठू। इसीलिए ये वो खुशी थी कि हर दूसरी खुशी के ऊपर ये खुशी हावी थी, गालिब थी। मैं तो पता नहीं कितना अरसा इस एक बात को सुनने के लिए तड़पी थी, जैसे मेरे कानों को इसी चीज का तो इंतजार था। अब रब ने ये फरमा दिया कि मैं राजी हो गया, तुमने जितना भी कर लिया, कम किया या ज्यादा, तुमसे जो कमियां कोताहियां रह गई, तुमने जो भी गुनाह कर दिए, मगर अब हतमी बात यही थी कि वो राजी हो गया। मेरे तो सारे जिस्म में ऐसे लग रहा था खुशी की लहर दौड़ गई है। इतना तो मैं अपने बच्चों से मिलके भी खुश नहीं हुई थी, इतना तो मैं जन्नत की नेमतें पाके भी खुश नहीं हुई थी, जितना मुझे इस ऐलान ने खुश कर दिया। फिर उस रब ने दोबारा पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कितना मेहरबान, कितना रहम करने वाला हम पर, जो हमसे ये पूछ रहा, हम जैसे नाकदरों से उसने हमारी कितनी कदरदानी की। मुझे बाकी ऊंचे दर्जे वालों का तो नहीं पता, मगर मैं तो किसी काबिल नहीं थी। मेरी जैसी अदना सी चीज और रब पूछे कुछ और चाहिए। दुनिया में होती तो शायद ये सुन के मैं तड़प कर ही मर जाती कि ये जहानों का रब मेरे जैसे जर्रे से भी कमतर चीज से पूछ रहा है। मैंने कहा, या अल्लाह, तूने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, तूने हमें जन्नत अता कर दी, तूने हमें आग से निजात दे दी, और हमें क्या चाहिए? एक ऐलान करने वाले ने फिर कहा, चलो अब जमा हो जाओ उस मैदान में जहां पे तुम्हें तुम्हारे रब का दीदार मिलेगा। ये ऐलान सुन के ऐसी खुशी हुई कि लग रहा था दिल फट जाएगा। उस रब को देखने की तो कितनी तमन्ना थी, जिसको देखने के लिए मूसा ने तूर पे दरख्वास्त की थी कि रब तुझे देखना चाहता हूं, तो फरमाया था मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, और सिर्फ पहाड़ पे तजल्ली पड़ी थी तो मूसा बेहोश हो गए थे। उस रब को देखने जाना है हमने कि जिसकी एक मखलूक जिब्राईल अलैहिस्सलाम की भी ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ला सके थे और बेहोश हो गए थे, वो रब अपना दीदार कराएगा? हम जन्नती उसको देख सकेंगे? ये मंजर कैसा होगा? मुझे तो ऐसी खुशी थी कि लगता था सारी जन्नत की नेमतें एक तरफ, वो भी कम तर लग रही थी रब के दीदार के मुकाबले में, कि इन सबसे ज्यादा महबूब मुझे ये था कि मुझे अपने रब के चेहरे को देखने की लज्जत हासिल हो जाए। मैं ख्यालों में खो गई, मैं उसको देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा? मैं तो पलक झपकना ही भूल जाऊंगी, मुझे तो होश ही नहीं रहेगा। खुशी से मैं दीवानी हुई जा रही थी कि ये दिन आ गया जब उसका दीदार मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ, जुबान बयान नहीं कर सकती जो मैंने देखा, और कोई कलम ये ताकत नहीं रख सकता कि वो लिखे जो मैंने महसूस किया। यहां तक हमारी ये सीरीज मुकम्मल हुई। मैं स्पीचलेस हूं, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूं, बस यही कह सकती हूँ, अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में करना जिनको तू अपना दीदार कराए, जिसके आगे हर नेमत हल्की हो जाए, हम इस काबिल नहीं। दिल चाहता है वापिस ना मुड़ के आए वहां से, और ये अभी कहानी है। तब भी ये हाल है कि सब कह रहे हैं कि जब हम ये सुनते हैं तो दिल चाहता है वापिस ना आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, फरमाया कि जब किसी मोमिन ने अपने लिए नेकी आखरत के लिए भेजी होती है तो वो यहां से जाने के बाद कभी वापस आने की आरजू नहीं करता। वंस यहां से चला जाता ना, कभी नहीं आना चाहता। आपके कोई प्यारे जो दुनिया से जा चुके आप उनके लिए बहुत तड़पते होंगे, लेकिन अगर उनके लिए वहां पे नेकी थी, उन्होंने आगे भेजी भी थी ना, वो कभी दुनिया में नहीं आना चाहेंगे। कौन आना चाहेगा? खुद बताएं कि वहां की बातें कैसी प्यारी, वहां के मकाम कैसे हसीन, वहां इल्लियीन का मकाम जिसको मिल जाए, वहां पे जिसके लिए जन्नत की तरफ की सिर्फ खिड़की भी खुल जाए, उसके तो कितने मजे आ गए, उसको दुनिया में आके क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी ही इसको सदका जारिया बना दे, इसको हमारे जन्नत में जाने के शौक को बढ़ाने वाला बना दे, इसे हम वो सबक ले सके कि फिर जन्नत की खातिर हम हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाए, और जन्नत की खातिर हम हर गुनाह से बचने के लिए ताकत पा लें, ये हमें नेकियों में दौड़ा दे और गुनाहों के लिए रुकावट बन जाए। एक दफा दोबारा आप लोगों को बता दूं कि ये तमाम बातें जो आपको इस सीरीज में बताई गई हैं, इनके कुरान से और हदीस से रेफरेंसेस मौजूद हैं। कुरान पाक में 30वें पारे में आप सब देख सकते हैं, सूरह रहमान, सूरह इंसान, इसी तरह हदीस में बहुत सारी बातें हैं, जैसे जो मैंने शराब की तफासील बताई हैं, तस्नीम की, रहीकुल मख्तूम की, और फिर जो खादिम जिस तरह के होंगे, इसी तरह इंसान के जन्नत में जो दर्जात हैं, जो आपको खेती की बात बताई थी, जो घोड़े उड़ने वाले घोड़े की बात बताई थी, जो बाला खानों का बताया, जो खेमे मोती के बने हुए, जो महल, जो लिबास, जेवरात के बारे में आप लोगों को इस सीरीज में बताया गया, इसी तरह जो खाने पीने, जो बर्तन वगैरह, जो तख्त मसहरियां, ये सब डिटेल्स हदीस में मौजूद हैं। कैसे माँ बाप ऊपर के दर्जे में होंगे तो अपने बच्चों को ऊपर के दर्जे में ले जा सकेंगे, और बच्चे ऊपर होंगे तो वो वालदैन को तरक्की दिला सकेंगे। अब ये सब भी हदीस से और कुरान से पता चलता है। ऊपर वालों के महलों को दूर तारों की तरह देखेंगे नीचे से, जो बागों की डिटेल्स बताई, जो दरख्तों की बताई हैं, जो चश्मों और नहरों की बताई हैं, और जिनकी नेकियां कम हो गई उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह ये जो औलाद की बताई है जिसको, ये सब इसी तरह हदीस में मौजूद है। और जिनकी नेकियां बराबर हो जाएंगी और अराफात में होंगे, वो वहां पे कैसे होंगे, उनके क्या हालात होंगे, ये भी कुरान पाक में मौजूद है। जन्नत के दरवाजे कैसे होंगे, पुल सिरात कैसा होगा, कितना मुश्किल होगा, और जन्नत तक पहुंचने के मरहले कैसे होंगे, ये जो सब कवर हुआ है ये सब हदीस में मौजूद है। इनमें से कोई बात भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, सिवाय इसके कि जो जज्बात थे कि क्या इंसान के जज्बात होंगे, वो खुद को वहां रख के सोचा कि अगर मैं वहां पे हूं तो कैसा होगा। तो इसके अलावा जितनी डिटेल्स हैं वहां की, वो इंशाल्लाह आप कुरान और हदीस से देख सकते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। और चूंकि इसके बाद मैं कुछ भी और नहीं लिख सकती थी, इसलिए बस यहीं तक ख़त्म कर दिया। कैसे लिख सकती हूँ अल्लाह ताला के दीदार को, मैं कैसे बयान कर सकती हूँ, ये तो जो इंसान वहां पहुंचेगा ही वो ही जान सकेगा। जी हाँ, और जुमा बाजार की भी जो बात की थी, और वहां पे किस तरह से लोगों का हुसन दोबाला हो जाएगा मर्दों का, वो भी हदीस से हमें मिलता है। तो सब चीज़ों के रेफरेंस मौजूद हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले।